नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज शाम जोहान्सबर्ग पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सीमा सुरक्षा बल को दुनिया का सबसे आधुनिक और आक्रामक बल बनाने के लिए 5 साल का लक्ष्य रखा है। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज दूसरा दिन। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहनिर्माण का आह्वान किया। बांग्लादेश में आज सुबह 5.7 तीव्रता के भूकंप के झटके, कोलकाता और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए। और दोहा में एशिया कप राइजिंग स्टार्स क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल मैच में इंडिया ए का सामना आज बांग्लादेश ए से हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज शाम जोहान्सबर्ग पहुंचेंगे। ये दक्षिण अफ्रीका की उनकी चौथी आधिकारिक यात्रा होगी। जोहान्सबर्ग से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2014 के बाद से ये 12वां G20 शिखर सम्मेलन है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भाग लेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अफ्रीका की धरती पर पहली बार आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए जोहान्सबर्ग पहुंचेंगे। वे इस 3 दिवसीय सम्मेलन के सभी सत्रों में भाग लेंगे और ग्लोबल साउथ की चिंताओं, सतत विकास, जलवायु केंद्रित पहल, ऊर्जा परिवर्तन और वैश्विक संस्थाओं में सुधारों सहित भारत की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और विश्व के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वे भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के नेताओं की बैठकों में भी शामिल होंगे। ये ग्लोबल साउथ में आयोजित लगातार चौथा G20 शिखर सम्मेलन है। इस वर्ष शिखर सम्मेलन का विषय है एकजुटता, समानता और स्थिरता। जोहान्सबर्ग से असुनुओ की रिपोर्ट के साथ
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। इससे पहले राष्ट्रपति ने तिरुमाला में श्री वराहस्वामी मंदिर में दर्शन भी किया। तिरुपति तिरुमाला देवस्थान के अध्यक्ष BR नायडू ने राष्ट्रपति का पारंपरिक रूप से स्वागत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि अगला वर्ष सीमा सुरक्षा बल BSF के आधुनिकीकरण और बल के कर्मियों के कल्याण के लिए समर्पित होगा। गुजरात के भुज में BSF की हीरक जयंती स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा है कि गृह मंत्रालय ने BSF को विश्व का सबसे आधुनिक और आक्रामक बल बनाने के लिए 5 साल का लक्ष्य रखा है। श्री शाह ने कहा है कि BSF ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
गृह विभाग ने तय किया है कि अगले स्थापना दिन तक बल को आधुनिकीकरण के सभी आयामों में से युक्त कर 5 साल में बल को विश्व का सबसे आधुनिक और सबसे पैनी आक्रमण क्षमता वाला हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाएंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र में विशेषज्ञों के साथ 11वें बजट पूर्व बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक केंद्रीय बजट वर्ष 2026-27 के संबंध में आयोजित की गई थी। इसमें विद्युत मंत्रालय, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिवों, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भाग लिया। पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM की प्रथम स्तरीय जांच आज से कोलकाता के न्यू टाउन में शुरू हो गई है। वरिष्ठ उपचुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती ने निर्वाचन आयोग का दल इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। राज्य में मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की समीक्षा के लिए हर दल पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया चल रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीत रिनवा के हवाले से बताया कि मतदाताओं ने मतगणना पत्र समय पर भरने जमा करने का आग्रह किया है। हापुड़ जिले में ब्लॉक स्तर पर अधिकारी BLO घर घर जाकर मतदाताओं को SIR पत्र दे रहे हैं। हापुड़ विधानसभा क्षेत्र के लज्जापुरी मोहल्ले की BLO पूनम चौधरी ने बताया है कि इस प्रक्रिया के दौरान SIR पत्र भरने संबंधी आवश्यक जानकारी भी प्रदान कर रही है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 56वें संस्करण का आज दूसरा दिन है। सुनिए आदर्श की ये रिपोर्ट।
31 फरवरी 2025 के दूसरे दिन दो विशेष उद्घाटन हुए, इंडियन पैनोरमा और मास्टर क्लास। इंडियन पैनोरमा प्रतिष्ठित भारतीय फिल्मों की विशेष प्रदर्शनी है। यह इस फिल्म महोत्सव का एक मुख्य आकर्षण है। कमलेश मिश्रा की फिल्म काकोरी ने नॉन फीचर फिल्म श्रेणी का शुभारंभ किया, जबकि राजकुमार पेरियासामी निर्मित तमिल फिल्म अमरन पहली फीचर फिल्म रही। निर्देशक मुजफ्फर अली की 1978 की फिल्म गमन भी आज दिखाई गई। इस फिल्म ने 1978 में इफ्फी में सिल्वर पीकॉक पुरस्कार जीता था। फिल्म प्रदर्शनी के बाद फिल्मकार शाद अली से बातचीत में दोनों ने अपने सिनेमा यात्रा और अपने काम के बारे में दर्शकों तथा फिल्म प्रेमियों के साथ मनोरंजक किस्से साझा किए। इफ्फी 2025 का दूसरा दिन भी उत्साह और रोमांच के साथ भरा हुआ जा रहा है और सिनेमा के जबरदस्त जादू के साथ रफ्तार बनाए हुए है। सायरा मुस्तफा के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार।
इस अवसर पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने सह निर्माण पर राजदूतों की गोलमेज बैठक की भी अध्यक्षता की। प्रतिभागियों ने पायरेसी विरोधी उपायों को मजबूत करने, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सह निर्माण का विस्तार करने और वैश्विक फिल्म समारोह में भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देने पर चर्चा की। डॉ. मुरुगन ने अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण का आह्वान करते हुए कहा कि भारत स्वयं को विश्व के लिए एक स्टूडियो के रूप में स्थापित कर रहा है। इस बीच सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने मीडिया और मनोरंजन उद्योग को आकार देने के लिए अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। प्रवर्तन निदेशालय धनशोधन मामले में अवैध कोयला खनन के खिलाफ झारखंड और पश्चिम बंगाल में 40 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। यह अभियान कोयले की चोरी और तस्करी के मामले में सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता जिलों में 24 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और कई अन्य शहरों में मध्यम तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के कारण इमारतें हिलने लगी और लोग घरों से बाहर निकल आए। बांग्लादेश मौसम विभाग ने सुबह 10:10 पर 5.7 तीव्रता के भूकंप की सूचना दी। विभाग ने बताया है कि इसका केंद्र निरसंगिड़ी में माधवड़ी में स्थित था। कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी आज सुबह लगभग 10:10 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। राइजिंग स्टार एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में आज दोहा में भारत ए का सामना बांग्लादेश से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 6 विकेट के नुकसान पर 194 रन बना लिए हैं। इस मैच की विजेता टीम का सामना रविवार को फाइनल में पाकिस्तान या श्रीलंका से होने की संभावना है। आज विश्व टेलीविजन दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1996 में एक प्रस्ताव के जरिए 21 नवम्बर को इस दिन को मनाए जाने की घोषणा की थी।
टेलीविजन की बात की जाए तो भारत में सूचना और मनोरंजन के क्षेत्र में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों का विशेष महत्व है। दूरदर्शन और आकाशवाणी ने अपने कई कार्यक्रमों और धारावाहिकों के माध्यम से जनता का मनोरंजन किया है। रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक धारावाहिकों ने तो टेलीविजन को घर घर तक पहुँचा दिया। दूरदर्शन और आकाशवाणी ने अपने कई कार्यक्रमों और धारावाहिकों के माध्यम से जनता के बीच खासी लोकप्रियता हासिल की। इन धारावाहिकों में मालगुड़ी डेज, बुनियाद, हम लोग जैसे प्रमुख धारावाहिक शामिल हैं। भारत में टेलीविजन प्रसारण 15 सितंबर 1959 में प्रयोगात्मक तौर पर शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो ने की थी। बाद में 1965 में इसका नियमित प्रसारण शुरू हुआ और दूरदर्शन की शुरुआत हुई। भारत में टेलीविजन नेटवर्क की पहुँच 30 करोड़ घरों में 90 करोड़ दर्शकों तक है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की देखरेख में विश्व टेलीविजन दिवस समूचे देश में मनाया जाता है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज शाम जोहान्सबर्ग पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा सरकार ने सीमा सुरक्षा बलों को दुनिया का सबसे आधुनिक और आक्रामक बल बनाने के लिए 5 साल का लक्ष्य रखा है। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज दूसरा दिन। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण का आह्वान किया। बांग्लादेश में आज सुबह 5.7 तीव्रता के भूकंप के झटके, कोलकाता और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए और दोहा में एशिया कप राइजिंग स्टार्स क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल मैच में इंडिया ए का सामना आज बांग्लादेश ए से हो रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।